भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का पांचवा स्कंद अध्याय 26वां श्लोक संख्या 16 और 17। ये नारकीय लोगों का वर्णन बताया गया है, जिन्होंने जिस प्रकार की हरकत पैदा की है, अपराध किए हैं, जीव हत्या, जीव के प्रति बेदरकार, जीव के जो निर्मित लक्षण हैं उसका दुरुपयोग करना, उसको सामान्य समझना, या वो कुछ नहीं है, किसी न किसी भाव जो होता है वो अदिखाई या ईर्षा से पैदा होता है। यही ईर्षा, और भगवान ने जीव का जो कर्म निमित्त किया है और निर्मित भी बताया गया है, तो वो न करने से ये जीव का अपराध होता है। तो जीव मात्र, चाहे छोटा जीव बड़ा जीव, लेकिन आत्मा तो इनसे भी छोटा है। तो आत्मा हर एक जीवंत प्राणी के लिए अंततोगत वास जिम्मेदार है। इन पर अपराध करना, ये जिनकी चेतना खास करके मनुष्य, देवता या दानव, इन तीनों के लिए दंडनीय है। क्या दंड होता है इसका वर्णन है। तो इसमें भगवान ने जो जो हेतु सहित उनकी आज्ञा पालन करके ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बनाई है। ये हर एक योनिया पर जो जिसकी चेतना की जागृति है, ऐसे ही तीन प्रकार के मनुष्य, देवता या दानव। यदि भगवान का प्लान नहीं समझते इसके पीछे और अपराध करते रहते हैं, तो ये लोग दंडनीय होते हैं, और दंड हमेशा अधोगति देने वाला होता है। अधोगति होते हुए भी यदि दंड के प्रति पाश वो पश्चाताप नहीं होता, तब गया काम से। हाँ, भगवान कहते हैं कि कैसे आसुरी योनि मापन नम मूढ़ा जन्मनी जन्मनी कहकर भगवत गीता में भी इनको जरा ठपकाते हैं। तो यह 16वां श्लोक है। यस्त्वीह वै राजा राजपुरुषो वा अदंडे दंडम प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीर दंडम स पापी यान नर के अमुत्र सुकर मुखे निपतती तत्राति बलैर्विनिर निष्पश्य निष्पिश्य मावा मण अवयवयो यथैवेह क्षुण खंड अंतर स्वरेण स्वनन्य न्यक्तिर चिन्मूर्छितः कश्मलम उपगतो यथैवै हादृष्ट दोषा उपरुद्धः। यह जो कोई तू लेकिन इह इस जीवन में वै निसंदेह राजा राजपुरुष राजा का आदमी वा अथवा अदंडे अदंडनीय को दंडम दंड प्रणयति देता है, ब्राह्मणे ब्राह्मण को वा अथवा शरीर दंडम शारीरिक दंड सह वह व्यक्ति राजा अथवा राज्यधिकारी पापियान पापी मनुष्यों को नरके नरक में अमुत्र अगले जन्म में भी। शुकर मुखे शुकर मुख नरक में निपतती गिरता है। तत्र वहां अति बल ही अत्यंत बलशाली यमदूत द्वारा विनिशिप यश मान कुचला जाकर, गन्ने के मशीन में जैसे गन्ने को कुचलते हैं ऐसे कुचला जाकर अवयव यानी कि शरीर के विभिन्न अंग यथा सदृश एव ही इह यहां इक्षुखंड गन्नों के टुकड़े आर्तस्वरेण करुण स्वर से स्वनयनन चिल्लाते हुए क्वचित कभी कभी मूर्छित मूर्छित होकर कश्मलम उपगत मोहग्रस्त होकर यथा सदृश एव निसंदेह इह यहां अदृष्ट दोषा जो दोषी नहीं है उपरुद्धा दंड हेतु बंदी बनाया गया। अनुवाद, अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्याधिकारी को शुकरमुख नाम के नरक में ले जाते हैं जहां उसे यमदूत यमराज के दूत उसी प्रकार कुचलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेर करके रस निकलता है। जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दंडित होते समय अत्यंत दंडनीय ढंग से चिल्लाता है और मूर्छित होता है, ठीक उसी तरह पापी जीवात्मा भी आर्तनाद करता एवं मूर्छित होता है। निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। श्लोक संख्या 17। यस्वित्थ वै भूतानाम ईश्वरो अकल्पित वृत्तिनाम विविक्त परव्यथानाम स्वयं पुरुष उपकल्पित वृत्तिर विविक्त परव्यथो यथाम आचरति सह परत्यांधकूपे तद विद्रोहेण निपतति तत्र हासौ तैर्जन्तुभिः पशु मृग पक्षी सरीसृपै अर्यक्षक शुका मुक उत्कृष्ट मक्षिका आदि भीर्य के चाभी दुग्धास्तय सर्वतो अभिद्रुत माणा सत्स्तमसी विहित निद्रा निवृत्ति रल व्याथा व्यवस्थान परिक्रमाति यथा कुशरीरे जीवः। यह जो कोई तू लेकिन इह इस जीवन में वै निसंदेह भूतानाम कुछ जीवात्माओं को ईश्वर परम नियंता द्वारा उपकल्पित बनाया गया वृत्ति नाम जिनकी जीविका अविविक्त न जानते हुए पर व्यथा नाम पर पीड़ा स्वयं अपने आप पुरुष उपकल्पित श्री भगवान द्वारा निर्मित वृत्ति ही जिनकी जीविका विविक्त जानते हुए परव्यथ पर पीड़ा व्यथा नाम आचरति तो भी पीड़ा पहुंचाता है सह ऐसा व्यक्ति परत्र अगले जन्म में अंधकूपे अंधकूप नरक में तत उनको अभिद्रोहेण द्रोह करने से निपतति गिरता है। तत्र वहां ह निसंदेह असौ वह व्यक्ति तैर जंतु भी उन जीवों द्वारा पशु पशु मृग जंगली जनावर पक्षी पक्षी सरीसृप ही सर्प मशक यानी कि मच्छर युका जो बतकूण कीड़े मक्षिक आदि भी मक्खी आदि ये के अन्य जितने च और अभिदुग्धाः दंडित तय ही उनके द्वारा सर्वत्र सर्वत्र अभिद्रुणमाण पीड़ा पहुंचाए हुए तमसी अंधकार में विहित विक्षुब्ध निद्रा निवृत्ति जिनके वासस्थान अलब्ध प्राप्त न होने वाले अवस्थान आवास परिक्रामति घूमता है यथा जिस प्रकार कुशरीरे निम्न योनि के देह में जीव जीव। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं, इन तृण तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता कि उनके काटने से मनुष्य को पीड़ा होती है, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्य यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में चेतना विकसित रूप में होती है, अथ वे जानते हैं कि किसी का प्राणघात करना कितना कष्टदायक है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है तो वह निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं जहां उसे वे समस्त पक्षी तथा पशु सर्प मच्छर जूं कीड़े मक्खियां अन्य तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम कर देते हैं। आराम न करके कर सकने के कारण वह अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकूप में उसे वैसी ही यातना मिलती है जैसे कि निम्न योनि के प्राणी को। बाप रे बाप। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, बहुत बड़ा रोचक है आज का विषय, सुनो जरा। इस शिक्षाप्रद श्लोक में हमें पता चलता है कि निम्न प्राणी प्रकृति के नियम अनुसार मनुष्यों को तंग करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, अतः वे दंडनीय नहीं है। क्योंकि मनुष्य में चेतना विकसित है अतः वे वर्णाश्रम धर्म के नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, अन्यथा भर्त्सना के पात्र होंगे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। प्रकृति के तीन गुण और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, अतः समस्त मनुष्यों को चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में विभाजित करना चाहिए और उन्हें निर्दिष्ट नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। वे उन नियमों से तनिक भी विपत्त नहीं हो सकते। इन नियमों में से एक में बताया गया है कि उन्हें किसी पशुओं को यहाँ तक कि जो मनुष्य को सताते हैं उन्हें भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यद्यपि शेर किसी पशु पर आक्रमण करके उसे मारकर उसका मांस खाता है तथापि वह पापमय नहीं है, किंतु यदि विकसित चेतना से पूर्ण मनुष्य भी ऐसा करे तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्द में वह मनुष्य जो अपनी विकसित चेतना का उपयोग नहीं करता वरन उल्टे पशुवत व्यवहार करता है वह अनेक नरकों में दंड पाता है। यहां गृह अंधकूपम की भी बात बताई जाती है। अंधकूप नाम का नरक है और ऐसा घर हो के अंधकूप जैसा बने नहीं, गृहस्थ यानी कि घर में स्थिर होकर कृष्ण भावनामृत युक्त होना और सारा जीवन का व्यवहार करके भगवान की सेवा करना, ये गृहस्थ की स्थिति है। तो इन पर ज्यादा विवेचन करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने जीवन दरम्यान में बहुत सारे ऐसी शिक्षा दी है। इन चीजों पर आप ताजुब होंगे कि प्रभुपाद जी की चेतना कितनी गहरी है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिगं वंदेहं श्रीगुरो श्रीजुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधेयनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो इस श्लोक में अंधकूप नाम का नरक की व्यवस्था बताई है, वहां क्या होता है। वैसे प्रहलाद महाराज तो हित्वात्म पातम गृह अंधकूपम, ये कृष्ण भावना विहीन होता है, उनके घर की व्यवस्था एक अंधे कुएं जैसी बताई है। तो गृह अंधकूपम, लेकिन अंधकूपम नाम का नरक तो है, यानी कि जहां सिर्फ अज्ञानता का ही प्रभाव रहता है, ऐसे घरों में जीना मुश्किल होता है। भक्त लोग सहज स्वभाव से कृष्ण भावना भावित होकर घर की बाहर ही निकलना चाहते हैं। ये जाने अनजाने अनायास भी भगवान ने चेतना द्वारा चेतावनी दी है। चेतावनी क्या चीज है? सावधानी बरतो। तो हमारी चेतना इन चीजों पर जब गौर से देखती है तो अवश्य बहुत सारे अपराध जाने अनजाने में भी होते हैं या आदतों के अनुसार होते हैं, वो सब मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। ये अध्याय पढ़कर सब के यानी कि खास करके मनुष्यों के शरीर में इतना जोम नहीं रहता, क्योंकि थर थर कांपने लगता है। यदि क्या इसमें विश्वास रखें कि ये तो शास्त्र है लेकिन आजकल के जमाने में लागू नहीं होता है, ऐसे मानकर इसको हंसी मजाक में उड़ा दें, लेकिन हंसी मजाक कहां तक रहेगी? अज्ञानता मिटाने के लिए कोई कोशिश नहीं होती है, तो ये अपराध जन्य जो सारा शास्त्र का उपहास होता है, तो उसके लिए ये नरकगामी प्रवृत्ति ही बनी रहेगी। यहां हर एक व्यक्ति जिसकी चेतना दी है, चेतना का स्रोत आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक चेतना को हम दूषित करते हैं तो सृष्टि के तीन गुण सत्व रज और तमो द्वारा दूषित होती है। दूषित चेतना द्वारा हम जीवन को कैसे ठीक कर सके। इसलिए चेतना की शुद्धि होनी चाहिए। इस सारे जो दुनिया में जो सारा करप्शन जो जो उपद्रव है मनुष्यों द्वारा सर्जित, वो चेतना का ही तो प्रदूषण है ना। इसलिए मनुष्य की स्थिति ये चेतना का सदुपयोग करके जो भगवान की ओर जाने के लिए, परम सत्य की ओर जाने के लिए बनाई है। यदि चेतना आध्यात्मिक होने के कारण परम सत्य है, यदि चेतना न होती तो यदि चेतना खाने पीने सोने और प्रजनन करने में ही लगती है तो मनुष्य पशु ही कहलाता है। तो धर्म की बाबत में ये चेतना को असली रूप में धारण करने वाला कौन है, उनके लिए ही तो नियम बनाए गए हैं कि व्यवस्थित रूप से ये चेतना जहां से आती है जीव को दी जाती है। चेतना का स्रोत परमात्मा है। इसीलिए जीवो जीवस्य जीवनम ये शरीर के लिए ही लागू होता है। एक शरीर दूसरे शरीर पर अपने निर्वाह के लिए आधार रखता है, लेकिन चेतना, इसलिए भगवान ने निमित्त बनाए हैं जीव जंतु जिस पर अपने जीवन का निर्वाह रखते हैं। ऐसे शरीर ही तो होते हैं, पत्थर से थोड़ा निस्बत होता है जिसमें चेतना नहीं है। जहां जहां चेतना है, यानी कि वनस्पति में भी तो चेतना बताई है। चेतना द्वारा समय मर्यादा में हमें जीने का मौका मिलता है। हर एक जीव को, हर एक योनि में 84 लाख योनि में मौका मिलता है। यदि चेतना हो न होती तो ये अंग्रेजी में वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, कोई कोमा में चला जाता है, वो उसमें चेतना, चेतना होती है। चेतना पांच इंद्रियों में बनी रहनी चाहिए, लेकिन जो कोमा में चला जाता है, कम से कम उसकी श्रवण शक्ति की जो चेतना है सबसे ज्यादा प्रबल है पांच इंद्रियों से, तो वो चालू रहती है। इसलिए मरे हुए या मरने की तैयारी करने वाले इन लोगों को हरि नाम करके वो चेतना की जागृति या उसके साथ जो जो भगवान की ओर वाली जो समझ आती है वो हमेशा करनी चाहिए। क्योंकि जड़ पदार्थों को भी भगवान की चेतना वाली जो अध्यात्म की बताई, अध्यात्म यानी कि भगवान तरफी चेतना, वो आत्मा का स्वभाव है। इसे अधि आत्मा, आत्मा का जो स्वभाव है पहले से ही बनाया है, तो वो अधि आत्मा कहलाता, अध्यात्मिक चेतना। पार्थिव चेतना सिर्फ पृथ्वी तत्व या पंच महाभूत पर ही आकर्षित रहती है। तो ये सारी जानकारी मनुष्य जीवन में होनी चाहिए। जो पशुवत जीता है यानी कि उसकी चेतना का विकास नहीं है। इसीलिए तो कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए ये चेतना का विषय प्रभुपाद जी ने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, भगवान की भावना या आध्यात्मिक भावना है। व्यक्ति विशेष पर हम छोड़ देते हैं, अरे भगवान कौन है, लेकिन आध्यात्मिक भावना है तो भगवान को तो आध्यात्मिक भावना से ही जान पाएंगे। ये जानने में यदि कमियां रहती हैं तो वो भगवान के नाम द्वारा पूरी करनी है। इसलिए पूर्ण भगवान की भावना बनाने के लिए विशुद्ध भक्ति जो 24 घंटे हमें नियोजन करती है अपने को, ये सारी प्रक्रिया में भौतिक सृष्टि की प्रक्रिया में भी हमें जुड़े रखती है 24 घंटे, ये कृष्ण भावनामृत है। लेकिन पुरानी आदत है, कैसे अनजाने में भी छोटी छोटी चीज पर हमें किसी को तोकते रहना ठीक नहीं लगता, क्योंकि यहां तो आदर्श गृहस्थ आश्रम जो सातवें स्कंद में 14वें अध्याय में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बताते हैं, तो आदर्श गृहस्थाश्रम में हरेक जीव जंतु प्राणियों के जीवन की पूर्ति गृहस्थ को करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो न्यूयॉर्क में शुरू शुरू में बड़ा एक केस हो गया, श्रील प्रभुपाद 1976 में न्यूयॉर्क शहर में जब आए, उस समय हेनरी स्ट्रीट पर पुराना मंदिर था, नए मंदिर में आ गए, वो भी काफी पुराना बिल्डिंग तो था है, लेकिन 13 मंजिले ऊंचा, तो प्रभुपाद जी ने उसकी भव्यता इत्यादि देखकर काफी सराहना की है, और वहां तक कि यदि मैं मर जाऊं परदेश में तो मेरी समाधि ये छत पे करना, जैसे कि मैं दूसरे गगनचुंबी इमारतों को मैं देख सकता हूं, हमेशा दिखता रहूंगा। इतने आकर्षित हुए थे प्रभुपाद जी, कहने के कि ये इतना बड़ा साहस किया है तो उसको अच्छी तरह से उसके जतन करो। लेकिन 5 साल के अंदर ही उसको बेचना पड़ा, बीच में तो प्रभुपाद जी चले गए। लेकिन जब 1976 में आए, 1975 में वो खरीदा गया था 1 मिलियन में, तो संभाल नहीं कर पाए, इन लोगों को पता ही नहीं कि क्या क्या, बहुत सारी परेशानी खड़ी होगी। तो सर्वप्रथम परेशानी थे कि ये जो तल का भाग था वहां सारी गटरें इत्यादि बंद होती हैं लेकिन जाती हैं, लेकिन कई बड़े बड़े चूहे भी होते थे। तो जब रेस्टोरेंट नीचे बनाया तो काफी उपद्रव होने लगा, तो कई भक्तों ने फरियाद की कि प्रभुपाद इनका क्या करें, दूसरे लोग तो एक्सटर्मिनेटर को बुलाते हैं, एक्सटर्मिनेटर इतने सत्यानाश करने वाला, जीवों की हत्या करने, इनको बुलाते हैं और अपनी जिम्मेदारी। तो प्रभुपाद कहते हैं अरे भैया जब तक आप इनविटेशन दोगे ये तो जीव हैं, इनवाइट करते हैं तो इनको खिलाना पड़ेगा, यदि इनविटेशन ही नहीं करते तो खिलाने की आवश्यकता भी नहीं रहती, वो आएंगे भी नहीं, लेकिन मारना जघन्य पाप है, जीव की हत्या करना पाप है। आपकी सुविधा के लिए एक छोटा सा मक्खी जंतु या मच्छर भी हो उनको मारने का अधिकार नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक आदर्श भक्त तो चींटी को भी मारने में इच्छा नहीं रखता कि अनायास ही आ जाए। देखो जड़ भरत की कैसी उसकी चेतना थी, जागृत थी है? तो एक बड़े आदमी को छोटा उपद्रव, लेकिन मारने का नहीं था उसकी सुविधा। ऐसे राहुगण को वो ठीक रहा क्योंकि आत्मा की चेतना, लेकिन जड़ भरत ने जानबूझकर चींटियों पर पांव नहीं रखा। हम तो अपने मूड में चले जाते हैं, वृंदावन में तो कितनी चींटियां जाती होगी, जागृति भी नहीं आती। मच्छर आया को फट देके मार दिया, देखो ना कितना लव पी गया, हम देखते हैं रात को सोते सोते भी मच्छर। वे जब इनविटेशन देते हैं तो मारने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये भी तो मेहमान है, मेहमान को निमंत्रण करते हैं बाद में मारते हैं, ये तो कैसी जाए, ये कहीं आदर्श गृहस्थ आश्रम है नहीं, तो सावधान। एक बार तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी जब थे अंत में, तो मच्छर काफी थे मायापुर में, आज भी ऐसे ही मच्छर आते हैं। हाँ, और वो तो उस समय में तो थोड़े थे, अब तो ज्यादा हो गए हैं, और हर जिबिजी मीटिंग में मच्छर आते ही रहते हैं और उसका समय हो जाता है। हाँ, तो कोई पंखा चलावे, कोई ये करे, भगाओ, लेकिन मारने की हिम्मत कोई नहीं करता है। खबरदार, यहां मारा तो वो बेचारा धूप लेकर भी आता है, पुजारी है, सब जगह धूप करके चला जाता है। हाँ, हटाओ, मारो मत। मच्छर हटाने के लिए कोई दवाई नहीं करता, लेकिन एक्सटर्मिनेट, ओ कुछ नहीं, चलो ऐसा मशीन बना दो। तो इलेक्ट्रिक वो क्या बोलते हैं, एक्सटर्मिनेटर मशीन बना, ये उसकी नीली सी लाइट होती है, मच्छरों को आकर्षित करते हैं, चिप आवाज आती है कि बेचारे को क्या हुआ, वो पता नहीं, हंस गया एक, फट 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 मक्खियां जाती है, ये जाता है, वो जाता है, और हमें तो मजा आती है कि चलो रक्षा हो रही है ना। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? जीव हत्या। चैतन्य महाप्रभु ने जीवेर दया, कृष्ण भावना मृत्यु का जो सारा जीव दया का अनुलक्ष है, क्योंकि वो दिव्य चेतना वाला है, वो बाहर से क्या कर रहा है वो उसकी दिव्य चेतना में हमें नहीं जाना है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं, जो एक जीव दूसरे जीव पर जो आधार रखता है जीवन का, तो पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट को हिंदी में क्या बोले है? परजीवी। परजीवी कौन? परजीवी नहीं है यहां। बायोलॉजी में पढ़ोगे तो उसे फूड चेन कहते हैं, एक जीव दूसरे जीव को, लेकिन बड़े जीव छोटे जीव को खाता है, सही? जीवो जीवस्य जीवनम, ये तो नारद मुनि ने बताया है, पर लेकिन वो निर्धारित है, वो उनको वर्णाश्रम लागू नहीं होता, लेकिन मनुष्य को चार वर्णों में भगवान ने स्वयं बांटा है, तो वर्णाश्रम के पीछे गुण कर्म विभाग सह करा है। हाँ? तो अपने अपने गुणों में भगवत सेवा के जो निर्देश किए हैं वो निर्दिष्ट कर्मों से ही तो भागवत धर्म साबित होता है। हाँ? भगवान प्रथम अध्याय में भगवान कह देते हैं, सुत गोस्वामी इत्यादि कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये तो कार्डिनल प्रिंसिपल व्यासदेव ने लिख दिया है भागवत की शुरुआत में, दूसरा ही श्लोक है, पर लेकिन सुत गोस्वामी इत्यादि पर यही मार्ग पर चलते हैं, वो कहते हैं वर्णाश्रम में जो सूचित किए गए कर्म भगवान के संतोष के लिए यदि करें तो संसिद्धिम परि हरितोषणम, ये अपने अपने स्वधर्म यानी कि सूचित कर्म जो किए गए हैं, ये कहे गए उस धर्म को भगवान के प्रति के लिए करना है, उसे चार चार वर्णों के आश्रम की जो सफलता है भगवत परायण होने की, ये है। तो तमर कृष्ण महाराज उस समय मायापुर में प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं, और एक मच्छर आया फटक वैसे ही मर गया। कभी कभी ऐसा होता है आप हाथ से हटाने का प्रयत्न तो वहां गिर जाता है, मर जाता है। हम ऐसा नहीं कि लहू निकलना ही चाहिए, तो ही मरा कहा नहीं, वो तो थोड़ा यदि कोई कोई बड़ा आकर किसी को आदमी को मार देता है तो हाय हाय होता है, सब रोने लगे, पर एक मच्छर के लिए कोई हाय हाय करने वाला नहीं। तो तमा कृष्ण महाराज ऐसे मच्छर मर गए तो उनका जीव थोड़ा खट्टा हो गया कि अरे ये गलती हो गई। तो उसके भाव स्वाभाविक रीते उसके मुंह पर दिखाई देने लगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या आज क्या बात है? हाँ तो प्रभुपाद जी एक मच्छर मर गया। अब तो तूने हरि बोल करा के नहीं प्रभुपाद कोई मर जाता है तो हरे कृष्ण कहो। हाँ क्योंकि आप चेतना के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा होता है, लेकिन हरे कृष्ण करके मार के मत मार। ऐसा नहीं करना, हरि बोल करना, पर लेकिन हमें ये पुरानी आदत है, इसे कैसे हटावे भी। कोई टिकिया लाता है, ऑल नाइट आउट, ऑल आउट एंड ये सब प्रकार के बने हैं। किसी ने गिना कि कितने मरे हैं, उसके अंत्येष्टि करी है? कुछ नहीं, क्योंकि वो तुम्हें राह देख रहे हैं कि तुम कब मरोगे, और उस समय जो पीड़ा हम कि एक जीव दूसरे जीव की जान लेने के लिए तैयार है। तुमने हमें जितनी पीड़ा पहुंचाई उतनी ही पीड़ा हम देंगे। किसी को तो मलेरिया हो ही जाता है, डेंगू हो जाता है, अभी तो क्या के चिकनगुनिया भी हो जाता है, अभी तो मच्छर से भी छोटे छोटे जीव वायरस पैदा हो गया है, पता नहीं कहां से आया। ये क्यों इतनी सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो रही है? हम अपना जीवन साफ सुथरा रखे तो सिर्फ अकेले शरीर की सफाई नहीं, हम अपने जहां रहते हैं उसकी भी तो सफाई करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने शुरुआत में ही सब ब्रह्मचारियों को जो जो मंदिर में रहते हैं इनको सोने के बाद मंगल आरती में उठो, उठते पहले आप पोछा इत्यादि करो, अपना बिस्तर बांधो, पोछा करो। हाँ कोई आज करता है क्या? हाँ ठंडे पानी से नहाओ, इसमें सफाई और चेतना की जागृति उपरांत बहुत कम मात्रा में हमें मिनिमाइज करते हैं, कम मात्रा में ऐसे अपराध होंगे जो दूसरे जीवों की। ठंडी में तो मच्छर भी नहीं उड़ता है ना, थोड़ी गर्मी लगती है तब मच्छर आते हैं, लेकिन जहां साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण है मच्छर नहीं आते। लेकिन पसीने यदि चढ़ता है तो मच्छर को आकर्षित करेगा। कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब मुंह में से निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ही मच्छर आकर्षित होते हैं। बहुत सारी चीजें मिलती है मच्छर मारने की, तो मच्छर को भगाने के। हाँ मच्छर की मोटेल भी आती है, एक बार चेक इन करो यू कांट चेक आउट एम के, एक बार अंदर जाओ बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसी तरह रोज की मोटल निकली है, पर लेकिन अंततगत्वा उसे स्टार्वेशन से भी मारा गया ना, तो जिसका परिणाम उनका निकाल ही करना है। और आप हल्के निकाल का उपाय अजमाओ या तात्कालिक, क्या फर्क पड़ेगा? जीव हत्या जीवों को हम जानबूझकर उनकी जो मर्यादा वाली जो जिंदगी दी है उस जिंदगी में वो अपने जिस तरह निर्वाण करने के लिए भगवान या ब्रह्मा जी ने रचना की है, क्योंकि ऐसी ही भावना है। कोई किसी का लहू पीने की भावना करके मर जाता है तो क्या बनेगा? मच्छर शेर इत्यादि, जिस तरह वो इसकी भावना बनी रही है उस प्रकार का ही शरीर प्राप्त करता है। लहू पीने वाले कौन है? शेर है। कल ही हमने सुना चंडीगढ़ के चिड़ियाघर में एक आदमी 20 फुट ऊंची दीवार थी, वो अंदर जाने के लिए कूदा, शेर, और किसी ने वीडियो बनाई, शेर को घिसट के ले जाता है, मार दिया सबने, उसने किसी को मारा तो होगा, तब तो यही हालत हुई है ना। हमने पहले भी सुना था, ये कहां की बात है, इंडिया की है, दूसरे चिड़ियाघर में जो सफेद शेर होते हैं ना, बाघ, तो उसमें वहां उसके प्रति पता नहीं, ये थोड़ा पागल सा तो था ही, बाघ के आगे ही बैठा रहता था। कई दिनों लगातार उसने, और एक दिन तो घुस गया, ऐसा घुसा तो बाघ आया, तो बाघ के तो मैं बाघ हूं, जा जा जा, तू जब नजीक आया तो क्या कभी नहीं चाहिए, जाओ भागो। बाघ कहते हैं तू आया है, मुझे एक बार निमंत्रण देता है, मैं तो खाऊंगा, सही ना। तो ऐसी हालत है कि मनुष्य की विकृति जिस हेतु के लिए जो मनुष्य की रचना की है, नवमा क्रम, दसवा देवता और दानव का, पर लेकिन मूर्खता मनुष्य में ज्यादा बताई है। जो व्यक्ति अपने सुख की भावना दुखों की गिनती से करता है तो मूर्ख नहीं तो क्या है? है, अपने सुख की कल्पना दुखों की गिनती से करता है, दुख है तब ये तो सुख दुख का ही विचार करता है, मारने पड़ने का कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों को दुख देकर अपने को सुखी बनाने की भावना कितनी बेहद बेकार होगी। दूसरों को दुखी करके, मार करके सुख पाने की तो भावना कैसे, चलो मच्छर मारा क्या मुझे सुख मिल गया, कितने मारते रहोगे, तो कहां गई चेतना। मायापुर में जो नुस्खा बताया है कि नीम का तेल चिपक के सो जाओ तो मच्छर नहीं काटेंगे, जाते हैं सब, बहुत सारी बिक्री होती है मायापुर में, नीम का तेल स्प्रे में आता है, शूट करें मच्छर नहीं आएंगे, ठीक है, इसे मरता भी नहीं, तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, फिर भी आदत बनी है, फट दे के मार देते हैं। जीव की अपनी सुरक्षा के लिए किसी का लहू पीना भी मच्छरों को दिया है, जहां लहू जाता है वहां वही तो उसका खुराक है, लेकिन मच्छरों का कोई खुराक अन्यथा नहीं है। कहते हैं कि मादा मच्छर लहू पीती है, लेकिन जो पुरुष मच्छर होता है वो पेड़ का रस पीता है, ऐसा बताया है, हम पढ़े थे इसलिए बोल रहा हूं। स्कूल में एनोफिलिस एंड क्यूलेक्स, नर को क्यूलेक्स बोलते हैं, मादा को एनोफिलिस बोलते हैं, तो वहां जातिवाद हो गया। जो भी है जाति से क्या मतलब, तो कहने का मतलब है ये जो नरक की पहचान करा रहे हैं, अंधकूप नाम का नरक है, जहां अज्ञानता ही व्यापक होती है, अंधा कुआ, यानी कि वहां कोई ज्ञान की चिंगारी वाला थोड़ा जाएगा। जिसका दीप बुझा ही है तो बुझे हुए दीप अंधा कुआ, अंधा नरक, अंधकूपम, ये नरक में फर्क क्या पड़ेगा? तो ये गति है उसकी, ये सारी गतियां कोई काल्पनिक नहीं है लेकिन चेतना को अनुलक्ष में बनाई गई है, क्योंकि चेतना तो कभी मरेगी नहीं लेकिन दूषित हो सकती है। तो दूषित चेतना वाले का जन्म कहाँ होगा? लेकिन उसके कराए कराए पर हिसाब कौन चुकाएगा? तो नरक की यातना बताते हैं, ये कोई कल्पना का विषय नहीं है, चेतना का विषय है। कल्पना करना वो भी चेतना का दुरुपयोग बताते हैं, ये कोई काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। तो किसी को कोई प्रश्न है? ये अंधकूपम, अंधे कुएं में से बाहर निकलना का क्या प्रयोग होता है, क्या उपाय है? बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें एक बात और याद आ गई, प्रजापति बनने के लिए भी ये बहुत आवश्यक सूचना है। जब प्राचीन वर्ण ने अपने 10 बेटे को प्रजापति बनने का आदेश दिया, वो अकलमंद थे, वो सीधे बिंदु सरोवर के पास जाते हैं, शिव जी इनकी सराहना करते हैं कि वो जानते हैं कि ये कौन है और क्यों आए हैं भगवान की तपस्या करने के लिए, जीव को बुलाने के लिए, जीव को आकर्षित करने के लिए, उनको एक विशुद्ध जीवन जीने का मौका देने के लिए ये प्रचेता गए थे 10 बच्चे। और खुद क्या कर रहा था बाप? कर्म कांड करके पशु होम करता था। तो नारद मुनि ने सोचा कि यही एक ठीक समय है, वो गए इनके पास, उनको बताने लगे। मृत्यु का भय इनको है ही नहीं, दूसरों को मृत्यु देता है क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म कांड के विषय में पशु होम भी होता है। तो नारद मुनि ने कहा, भैया तू उसे छूट, ये कर्मकांड से छूट, ये तुझे तूने बहुत कार्य करें और बहुत सारा इतना पुण्य भी कमाया है लेकिन बहुत सारा पाप भी कमाया है। तो कि पाप कैसे होता? कि तूने ये हत्या की है, पशु होम किया है तूने, ये सब तेरी राह देख रहे हैं, उनके सिंगे इत्यादि वो सब भोंकने के लिए तैयार हैं, बेहतर है बंद कर और भगवान की शरण ले ले। ने कहा स्पष्ट, नारद मुनि ने कहा कि ये सब तेरे लिए तैयार हैं कि तू जब आएगा, क्योंकि तेरी नरकगामी स्थिति भोगनी तो पड़ेगी, तब भोंकेंगे, राह देख रहे हैं तुम्हारी। तो कहने का मतलब है कि सभी को इन चीजों से पसार होना ही होता है, लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।